सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
भगवान ने आत्मज्ञान का चैप्टर खत्म किया, आत्मज्ञान के बारे में बता दिया। अब 39वें श्लोक में उन्होंने कहा ऐसा ते अभिता सांख्य अभिता में सुक्ता, मैंने आपको सांख्य के बारे में बता दिया, सांख्य कैसे क्या हुआ, कैसे संख्या से सांख्य हुआ, ये हम लोगों ने देखा है। सांख्य मतलब आत्मज्ञान, आत्मज्ञान हमने तुमको दे दिया। बुद्धि योगे तिवाम श्रुणु, अब बुद्धि योग बुद्धि, ये योग बुद्धि क्या है? तो यहां पर बताया गया कि योगे तु तत्प्राप्ति उपाय निसंगतया, उसकी प्राप्ति का उपाय है। किसकी प्राप्ति का उपाय है? सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग बुद्धि चाहिए। योग बुद्धि क्या है? उपाय है। पहले आपको क्या करना होगा? पहले योग बुद्धि करनी होगी। तो ये योग बुद्धि क्या है? कहते हैं निसंगतया द्वंद प्रहान पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थम, ईश्वर की आराधना करनी है। जो भी आप कर्म करेंगे वो ईश्वर की आराधना होनी चाहिए, उसमें द्वंद नहीं हो। द्वंद मतलब पेयर ऑफ अपोजिट्स। पेयर ऑफ अपोजिट कैसे हम पार कर सकते हैं? हमने देखा था कि समता अगर बनानी है तो कर्म करने के पहले बनानी होगी समता, कर्म करने के समय, कर्म फल के समय समता नहीं बनेगी। समता अगर बनानी है तो आपको कर्म शुरू करने के पहले ये माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि हमको सम रहना है और निसंगतया। तीन चीजें उन्होंने यहां पर संक्षेप में बताई हैं कि आपको अगर योग बुद्धि चाहिए, योग बुद्धि क्या है? प्राप्ति उपाय। किसकी प्राप्ति का? आत्मज्ञान का। भगवान आत्मज्ञान दे चुके हैं, अर्जुन के सिर के ऊपर से चला गया है। भगवान समझ गए कि ये अभी अधिकारी पूरा नहीं बना है, तो उसको अधिकारी बनाने के लिए बोलते हैं आपको पहले योग बुद्धि करनी होगी। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, ऐसी बुद्धि पाने के बाद में, योग बुद्धि पाने के बाद में कर्म बंधन प्रहास्यसी, फिर जो है कर्म बंधन जो है खत्म हो जाएगा। ये कर्म बंधन क्या है? तो कहते हैं बुद्धा या योग विषया युक्तो ही पार्थ कर्म बंधन, कर्म एव धर्म अधर्म आख्यो बंध। हम जो कर्म करते हैं वो कहते हैं ना ये पाप हो गया, ये धर्म हो गया, ये अधर्म हो गया, ये पाप है, ये पुण्य है, और उसके हिसाब से हमको पाप के हिसाब से दुख मिलता है, पुण्य के हिसाब से सुख मिलता है। कर्म बंधन प्रहास्यसी, ईश्वर प्रसाद निमित्ति ज्ञान प्राप्ते इति अभिप्राय है कि वो तुम्हारा धर्म अधर्म पाप पुण्य सब खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? कहते हैं ईश्वर प्रसाद बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर के प्रसाद से, भगवान के प्रसाद से, भगवान के ग्रेस से क्या मिलेगा? निमित्ति ज्ञान प्राप्ते, ज्ञान मिलेगा। बहुत बड़ी बात शंकराचार्य जी ने लिख दी है यहां पर। आप ज्ञान के अधिकारी कब बनोगे? पहला बात तो है योग बुद्धि होनी चाहिए, आप लोगों में थोड़ी योग बुद्धि है। ज्ञान प्राप्ति कब प्राप्त होती है? ईश्वर प्रसाद देना। अगर ईश्वर की ग्रेस नहीं हो, ज्ञान नहीं मिलेगा, कभी नहीं होगा। तो अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ईश्वर की कृपा है। ये ऐसे समझना होगा आपको। ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्त इति अभिप्राय है। और जब वो ज्ञान मिल जाएगा तब ये पाप पुण्य सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। तो हमने जो पीछे के पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, सब खत्म, कुछ नहीं रहेगा, केवल प्रारब्ध रह जाएगा। वो प्रारब्ध क्या है वो हम कभी बाद में बताएंगे। पिछले कर्म के जितने भी पाप पुण्य हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। किससे खत्म होंगे? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान के अधिकारी कब बनेंगे? जब योग बुद्धि होगी। योग बुद्धि क्या है? आपको कर्म करना है निसंगतया, द्वंद से मुक्त होना है। समता कर्म करने के पहले बनानी है कि हम सम रहेंगे, सुख आए चाहे दुख आए, हम जो है उसे प्रभावित नहीं होंगे। और तीसरा ईश्वर आराधना। ये तीन चीज बराबर याद रखना, ईश्वर आराधना। हम बराबर हर क्लास में हम कहते रहते हैं कि हर कर्म जो है ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हो, दैट्स ऑल। इसको पकड़ लेना है। तो ऐसा करने से क्या होगा? भगवान जो है एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने, विज्ञापन ऑफ कर्मयोग बोलते हैं। कर्मयोग करने से क्या होगा? नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, बोले इसके अंदर क्रम का नाश, अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम का नाश एक सीक्वेंस होता है, हर कर्म के अंदर सीक्वेंस होता है। जैसे यहां पर शंकराचार्य जी ने सीक्वेंस बताया कृषि का, तो कृषि में क्या है, स्टेप्स हैं। पहले आपको सॉयल प्रिपेयर करना है, मिट्टी तैयार करो, उसके बाद उसके अंदर हल चलाओ, बीज डालो, पानी दो, खाद दो, वीड्स को निकालो, उसके बाद में फिर आपको फसल मिलेगी, उसको ड्राई करो, उसके बाद में उसको झाड़ फूंक करके जो करके उसको थैली में डाल के तब आपको पैसे मिलते हैं, उसके पहले पैसे नहीं मिलेंगे। इतना काम करने के बाद में तब फल आता है, किसान तब अपनी फसल उठा के घर में लेके आता है, तब उसको पैसे मिलते हैं। अगर एक भी उसमें से कर्म ना करे, उसमें एक भी सीक्वेंस को ड्रॉप कर दे, फल नहीं मिलेगा। कर्म योग में बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सो देर इज नो लॉस ऑफ एफर्ट। और हमने आपको बताया भी था कि आप जो है हमारे मिशन के अंदर में वैकुंठ करने के लिए आए, इस राइन में आज वैकुंठ करेंगे। आपने ठीक किया था कि एक घंटा समय लगेगा वैकुंठ करने में सारा श्राइन को। आपने दो मिनट वैकुंठ किया, कुछ ऐसा आपको फोन आ गया, आपको जरूर जाना पड़ गया जल्दी, तो ये दो मिनट जो काम किया है इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम भगवान से कनेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए हमको फल मिलेगा। मगर यही अगर काम में कर्म होता, अगर हम किसी को बुला के करवाते कि भाई हमारा श्राइन वैकुंठ करना है, तो कहता एक घंटा लगेगा, हमें $15 देने होंगे। अगर वो दो मिनट में चला जाता तो हम उसे देते $15? नहीं देते। उसको फल मिलता दो मिनट का? नहीं मिलता। तो कहते हैं कर्मयोग के अंदर अगर थोड़ा सा भी करो दोगे तो भी उसका लाभ मिलेगा। प्रत्यवायो न विद्यते, बोला इसका कोई रिएक्शन नहीं है। यहां शंकराचार्य जी कहते हैं अपि चिकित्सावत, चिकित्सावत। जैसे चिकित्सा के अंदर आपने दवाई उल्टी ले ली, ज्यादा ले लिया, कम लिया, रिएक्शन हो जाता है, डॉक्टर लोग पूछते हैं ना, सबसे पहले पूछते हैं आपको पेंसिलिन से कुछ होता तो नहीं है, कुछ इससे होता है कि नहीं होता है, रिएक्शन इसका होता है कि नहीं? बोलते हैं कर्मयोग करने से कोई रिएक्शन, उल्टा फल नहीं होगा कभी, मगर रिचुअल्स के अंदर में उल्टा हो जाएगा। कर्म कांड अगर जैसी विधि लिखी हुई है वैसा नहीं किया जाए तो वो उल्टा हो जाएगा, फल नहीं देगा आपको। मंत्र उच्चारण गलती हो गया, फल उल्टा। विधि के अंदर आपने जो है एक मुद्रा उसकी कम बेसी की, उल्टा। कर्मयोग में ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभयात्। धर्म से मतलब ये कर्मयोग से, स्वल्प थोड़ा सा करने से भी त्रायते, त्रायते मीन इट प्रोटेक्ट्स, आपका रक्षण करता है। किससे रक्षण करता है? महत, महत क्या है? संसार भया जन्म मरण आदि लक्षणात्, आपको थोड़ा सा भी करने से जन्म मरण के लक्षण से बचा देता है। कितनी अच्छी बात कही, व्हाट ए गुड पब्लिसिटी ऑफ कर्म योग। बोले थोड़ा सा भी करो कितना लाभ है। और हमने आपको बताया था कि जब भगवान राम पुल बनाना चाहते थे रामेश्वरम से लंका तक, तो एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी, वो डुबकी लगाए पानी में, बालू में, फिर ऐसे लोटपोट करके थोड़े से बालू लेके फिर जाके वहां पर झाड़ दी, बस इतना ही काम। राम जी ने देखा, देखो कर्मयोग कितना स्वल्प, कितने बालू के कण लेके आती होगी वो, उसी के अंदर भगवान खुश हो गए, उसको लिया हाथ में, इतना लाभ है। अब आगे कहते हैं 41वां श्लोक,
व्यवसायात्मिका बुद्धि,
व्यवसायात्मिका बुद्धि,
एकेह कुरु नंदन,
एकेह कुरु नंदन,
बहुशाखायनन्ताश्च,
बहुशाखायनन्ताश्च,
बुद्धयो व्यवसायिनां,
बुद्धयो व्यवसायिनां,
व्यवसायात्मिका बुद्धिः, एकेह कुरु नंदन, बहुशाखायनन्ताश्च, बुद्धयो व्यवसायिनां,
व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन। कुरुनंदन जॉय ऑफ कुरुवंश, हो कुरुनंदन, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। बुद्धि के दो विशेषण यहां बताए, एक विशेषण है व्यवसायात्मिका और दूसरा है एका। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धि जैसा हम व्यवसाय समझते हैं उससे मतलब नहीं है यहां पर। व्यवसायत्मिका यहां शंकराचार्य जी कहते हैं निश्चित स्वभाव, निश्चित स्वभाव वाली बुद्धि एक होनी चाहिए। वो कैसी होगी? बोले एका, एक तरह फिक्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? देखो आपको एक एग्जांपल देते हैं। हनुमान जी ने लंका भी दहन किया और हनुमान जी संजीवनी बूटी भी लेके आए, दोनों देखो विपरीत काम है, दूसरे किस्म के काम है। लंका दहन किया हनुमान जी ने, संजीवनी भी वही लेके आए, मगर उनके पीछे भक्ति एक है। क्या भक्ति है? कि मैं राम का, भगवान का दास हूं। उनके अंदर दास भाव है, एक भाव है, उन्होंने भगवान को पकड़ के रखा है और हर काम भगवान की खुशी के लिए करते हैं, जो भी काम हो भगवान की खुशी के लिए। इसको हमको पकड़ना है, हमको भी ठीक उसी तरह से काम करना है। तो व्यवसायत्मिका निश्चय करना है। क्या निश्चय करना है? मेरे सबके कर्तव्य कर्म हैं, आप सबके कर्तव्य कर्म हैं, आप सबकी ड्यूटीज हैं, आपके वर्ण और आश्रम के हिसाब से आपकी ड्यूटीज हैं। पहला तो आपको यह मानना होगा कि मेरी ड्यूटी है, मेरे कर्तव्य कर्म हैं। उस कर्तव्य कर्म के साथ में आपको भगवान को जोड़ना है। कर्तव्य कर्म आप सब कर रहे हो, जो जहां पर है वो सब कर्तव्य कर्म कर रहा है। अब उस कर्तव्य कर्म के साथ में आपको भगवान को जोड़ना है कि ये कर्तव्य कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करेंगे। अगर ऐसा आप करते हो तो आपका व्यवसायत्मिका बुद्धि हो गई, निश्चय हो गया, आपने निश्चय कर लिया। जैसे हनुमान जी ने निश्चय किया कि हम राम जी के लिए सब कुछ करेंगे, दास भाव निश्चित। अब उनकी बुद्धि एक जगह फिक्स है, वहां से हिलती नहीं है, जो भी करेंगे राम जी के लिए करेंगे। तो हमको भी यही करना है। आपको ये समझ बूझ कर निर्णय लेना है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब आपकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाएगी, एक दिशा की हो जाएगी। हम जो भी कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। बहुत खूब। और उसके अंदर आपको एक चीज और जोड़नी है कि हम जो भी कर रहे हैं हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये कर्म हमारी भगवान की पूजा बन जाएगा। और जो हम अपने लिए करते हैं वो किसकी पूजा है? हमारी पूजा है। तो आज तक हमने जितने कर्म किए हैं किसके लिए किए हैं? किसकी पूजा की आपने? अपने ईगो की पूजा की, अपने अहंकार की पूजा की है। करना क्या है आपको? वही कर्म करने हैं। भगवान ने ये ऐसा नहीं कहा कि आपको योग बुद्धि देते हैं ऐसा ऐसा कर्म करना, रोज सवेरे उठ के इतनी पूजा करना, उसके बाद इतना मेडिटेशन करना, ये सब नहीं कुछ कहा। केवल एक चीज उन्होंने कहा कि आपको ईश्वर आराधना करनी है। आपके कर्म जो है ऐसे हों कि वो ईश्वर आराधना बन जाएं। और नहीं तो क्या होगा? अगर आप ईश्वर की आराधना नहीं करते हो, अपनी आराधना करते हो, तो बहुसाकाई अनंतास्य बुद्धो अव्यवसायिनाम। अव्यवसायिनाम, अव्यवसायी कौन है? जिसने ये निश्चित नहीं किया है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म करेंगे, वो कौन है? अव्यवसायी है। उसने निश्चित नहीं किया हम कर्म योग करेंगे, ये निश्चय उसने नहीं लिया। ये सब अव्यवसायी हैं। तो उनकी बुद्धि कैसी होती है? बहुशाखा अनंत होती है। ये भी करना, हर मिनट हर थॉट के अंदर ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, इस दिशा में उस दिशा में। और जो कर्म योग करते हैं उनकी बुद्धि, हमको भगवान के लिए करना है, एक शाखा एक होगी। और यहां पर अनंत बहुशाखा हो जाती है। देखो ऐसा क्यों करना पड़ता है? कहते हैं कि अहंकार के लिए किसी ऊंचे पद का चुनाव करना होगा, और सबसे ऊंचा पद वह है ईश्वर है। उस ईश्वर के अंदर ही आपका अहंकार लय होगा। सबसे ऊंचा पद जो है वो ईश्वर है, और अहंकार का अगर लय करना है तो उसका हमको चयन करना पड़ेगा, उस पद का, उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी अहंकार का लय होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप बोलेंगे कि भाई हमारा देश और भाषा ये भी तो ऊंचा है। जरूर ऊंचा है। जैसे आप अमेरिका में आके अगर मान लो आप पाकिस्तानी से भी मिल लेते हो ना, पहली बार आए तो न्यूयॉर्क में एक हमको नजर आया पाकिस्तानी, बता रही ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, भारतीय है ये तो, भारत के जैसा ही दिखता है। हम शिकागो आ गए, फिर आप लोग से मिले, आप दक्षिण भारतीय हो या उत्तर भारतीय हो, हम लोग सोते हैं फिर वी गेट कनेक्टेड ना, इमीडिएटली वी गेट कनेक्टेड। अगर आप उसके साथ में जुड़ जाओ, देश और भाषा से ऊपर भी ईश्वर है। ईश्वर के पास में जो है ना, कास्ट क्रीड लैंग्वेज नेशन कंट्री इन सब का भेद नहीं है वहां पर। तो अगर हम उससे जुड़ जाएं, उस ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, फिर तो कहना ही क्या, फिर आपका अहंकार वहां लय हो जाएगा। अच्छा वो कैसे ऊंचे हैं? तो हमने देखा है आगे, ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सब भूतों में है। सब भूतों में मतलब सब प्राणियों में है। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग के पास में, ह्यूमंस के पास में, मनुष्य के पास में ही वो ईश्वर है। सब भूतों में, इन ऑल बीइंग्स, सब भूतों में वो आत्मा है। फिर भगवान ने यह भी कहा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, कि हम सब भूतों के आशय में, सब भूतों के हृदय में मैं स्थित हूं। ऐसा भी भगवान ने कहा। तो इस तरह से ईश्वर जो है सबसे ऊंचा पद है, उस पद को हमको पकड़ना है। जब हम उसमें लय कर देंगे अपने ईगो को, फिर वहां काम नहीं है, क्रोध नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान का काम है। भगवान ने जो दिया हम करते जा रहे हैं, खत्म हो गया। बहुशाखा अनंता, और जिसकी बहुशाखा होती है बुद्धि अनंत होती है, उसका माइंड बराबर रेस्टलेस रहेगा, एजिटेटेड रहेगा। आप देख लेना आपका माइंड एजिटेटेड रहता है कि नहीं रहता है। आप काम में कर्म करते हो, सेल्फिश एक्शन करते हो, उसके अंदर काफी माइंड एजिटेटेड रहता है, अशांत रहता है। और अशांत को कुतो सुखम, अशांत कभी भी सुखी नहीं हो सकता, अशांत कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अव्यवसायत्मिका बुद्धि। देखो गुरु जी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि अव्यवसायत्मिका बुद्धि। हम लोग सबके साथ ये घटता है, आप स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो कि ऑफिस में जाते हो, सबका एक टाइम निश्चित है ना, कितने बजे ऑफिस पहुंचना है। आप जैसे ही सवेरे उठते हो आपको याद पड़ता है ना कि हमको 10 बजे वहां पहुंचना है कि 8 बजे पहुंचना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चय, और कुछ नहीं मन में आता उस टाइम में, आता है क्या 5 दिन ड्यूटी देनी है। मगर जैसे ही शुक्रवार शाम होती है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि जो 5 दिन तक निश्चित थी कि हमको दफ्तर जाना है इतने बजे पहुंचना है, एक थी एकदम बराबर एक, हमको इस जगह जाना है। अब वो शुक्रवार रात को आपके कॉलेज पूछते हैं कल का क्या प्रोग्राम है, कल आप पिकनिक करोगे, आपको बोलते हैं हमको पता ही नहीं है, हम सोएंगे देर तक सोएंगे फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, निश्चित बुद्धि नहीं है। अब व्यवसायी हो गई, बहुत शाखा हो गई, पिकनिक भी जा सकते हैं, हम खेलने के लिए भी जा सकते हैं, हम सोए भी रह सकते हैं, जो इट्स नॉट सर्टेन, इस तरह से बताते हैं। तो जो सेल्फिश व्यक्ति है उसकी बुद्धि कभी शांत नहीं रहती, कभी शांत नहीं रहेगी। तब हमको ये निश्चय करना है कि हम कैसे कर्ता बने, आपको सबको निश्चय करना है हम कैसा कर्ता बने, क्या हम साधक बने। अगर हमको साधक बनना है तो हमको ये निश्चय करना होगा कि हम कर्मयोग को पकड़ें, कर्मयोग को पकड़ें, क्योंकि हमको आत्मज्ञान चाहिए और कर्मयोग करना पड़ेगा, बिना कर्मयोग के काम नहीं होगा। और अगर अनिश्चित है, आपने डिसाइड नहीं किया, तो क्या हाल होगा। तो बोलते हैं कि जैसे आपको मान लो किसी कहीं नौकरी मिल गई ऑफिस में, मगर पोस्टिंग नहीं बताया आपको, आपको कैबिन नहीं दिया, आपको टेबल नहीं दिया, आपको चेयर नहीं दिया, मगर आप यूर एम्प्लॉय, आप क्या करोगे जाके, कभी इस टेबल में जाते हो, कभी उस टेबल में जाते हो, कभी वहां अड्डा मारते हो, कभी वहां अड्डा मारते हो, यू आर ए मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, कुछ नहीं है आपके पास में। तो हमारा हाल उसी तरह, हमने निश्चित नहीं किया, हमको अब ये कैसा कर्ता बनना है ये हमको निश्चित करना होगा। तो ये व्यवस्था बुद्धि करें क्यों, क्यों हम व्यवस्थात्मिका बुद्धि लें, क्या मिलेगा हमें। तो कहते हैं कि ये व्यवसायत्मिका बुद्धि लेने से आप ईश्वर तक पहुंच जाओगे, अगर नहीं आपने लिया तो ईश्वर तक आप कभी नहीं पहुंचोगे। और कैसे ये होता है, यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार आप अपनी ड्यूटी करो, नंबर वन, वो हम सब कर रहे हैं। अगर इसको कर्म योग के हिसाब से जोड़ दिया तो ये आपके मन का शुद्ध करने का कारण बन जाएगा, मन शुद्ध होता जाएगा। अगर कर्मयोग नहीं किया मन शुद्ध नहीं होगा, ये याद रखिएगा, कभी मन शुद्ध नहीं होगा, सारा जीवन काट के चले जाएंगे, आपका मन अशुद्ध ही रहेगा। और आपको याद दिला दें कि आपका यही अशुद्ध या शुद्ध मन दूसरे शरीर में जाएगा। अब इतनी डिटेल आगे बातें हम नहीं बताएंगे कि वो सूक्ष्म शरीर क्या होता है, कैसे जाता है नहीं जाता है, एडवांस बातें, मगर इतना मान के चलो कि आपका जो मन है यही मन शुद्ध या अशुद्ध ये दूसरे शरीर में जाएगा। हमने कई बार आपको बताया कि हम इस शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं मगर मन के लिए क्या किया है। ये शरीर तो अनित्य है, इसको हमने जला देना है, इसको दफना देना है। ये हम देखते हैं लोगों को, दूसरों का देखते हैं, हमारा भी ऐसा ही होगा ये भी निश्चित है, मगर जो मन इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है उसके लिए आपने क्या किया है, उसकी क्या साधना की आपने, उसको शुद्ध करने का क्या आपने किया उपाय, कुछ किया है। अगर आप अभी कर्मयोग करोगे तो इससे शुद्ध होगा, और शुद्ध होने के बाद में प्राप्ति उपाय याद रखना, ये बार बार, ये प्राप्ति उपाय है कर्मयोग, किसकी प्राप्ति का, ज्ञान की प्राप्ति का, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या होगा, मुक्ति हो जाएगी। अगर मुक्ति चाहिए क्या करना होगा, नहीं मुक्ति के पहले ज्ञान, ज्ञान पाने के लिए कर्म, कौन सा कर्म, साकाम या निष्काम, निष्काम कर्म क्या है, कर्मयोग, क्या क्या करना है कर्मयोग में, निसंगतया समता रखनी है कर्म के पहले। अब इसके बाद में आपको निर्वाचन करना है, निर्धारण करना है कि हम क्या करें, अपना धर्म करें कि नहीं करें, आपके वर्ण के अनुसार आश्रम के अनुसार आपको धर्म करना है। एक स्टूडेंट का क्या काम है, स्कूल में जाना। तो गुरु जी का एक प्रिय जोक है, राजू, राजू के पिता कहते हैं, राजू, हाँ पिताजी, तुम्हारे स्कूल से कंप्लेंट आया। हमारे स्कूल से कंप्लेंट आया, बोले मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया, कंप्लेंट कैसे आ सकता है। अब गुरु जी कहते हैं, मैं उस राजू को सारी जिंदगी से खोज रहा हूं, मिल ही नहीं रहा मेरे को, ये राजू कहां है,
राजू से एक बार मेरे को मिलना
होगा, एक बार मिलना होगा। तो बोले तो मैं गया ही नहीं। देखो हमारे बच्चे आजकल क्या करते हैं, जो उनका छात्र धर्म है ना, स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो करना चाहिए वो नहीं करते। राजू स्कूल नहीं जा रहा है, उसका धर्म क्या है, राजू का स्कूल जाना चाहिए। हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो भी जाएंगे कैफेटेरिया में बैठ जाएंगे, क्लास मिस करें, यहाँ का नहीं मेरे को पता है। इंडिया में स्कूल तक तो नजर रखते हैं, जैसे ही आप कॉलेज गए आपकी मर्जी, क्लास में आओ या नहीं आओ, जहां भी रहो। तो अपना धर्म नहीं पालन करते हैं। अब आपको मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं, इसके अंदर आप देखिए कि कर्मयोग और काम्य कर्म के अंदर में कितना फायदा है। इन दोनों में काम्य कर्म में क्या क्या तकलीफें हैं और कर्मयोग में क्या क्या लाभ है, क्या नुकसान है कर्म, काम्य कर्म में, और लाभ क्या है कर्मयोग में, इसको आप सुनिए, जरा ध्यान से सुनना है। काम्य कर्म में, कर्म में अभिक्रम नाश है। अभिक्रम नाश है मतलब अगर क्रम से आपने कुछ काम नहीं किया, पूरा नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है। अगर हम किसी नौकर को रखें, याद रखना वैक्यूम क्लीनर, पूरा काम नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा ही है ना। और कर्मयोग में अभिक्रम का नाश नहीं है, नो लॉस ऑफ एफर्ट, 2 सेकंड भी करोगे तब भी उसमें लाभ है, कर्मयोग का फायदा। दूसरा है प्रत्यवाय नहीं है, कर्मयोग के अंदर प्रत्यवाय नहीं है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। मगर प्रत्यवाय काम्य कर्म के अंदर, रिचुअल्स के अंदर, कर्मकांड के अंदर है। अगर आपने शुद्ध उच्चारण नहीं किया मंत्र का, दोष लगेगा। आपने नियम पूरे नहीं फॉलो किए, आपको फल नहीं मिलने वाला है। काम्य कर्म में एटीट्यूड क्या होता है, ये काम्य कर्म मेरे लिए है, और कर्मयोग के अंदर, अच्छा कर्म क्या दूसरा है कि एक ही है, ये याद रखना, कर्म एक ही है। भगवान ने गीता में कहीं पर ये नहीं कहा कि तुमको ये करना है, भगवान कहते हैं आप अपना कर्तव्य कर्म करो बस, कैसे करना है वो आपको हम बताते रहेंगे। अच्छा काम्य कर्म के अंदर फल जो है कंप्लीट होने पर फल मिलेगा। किसान को फल कब मिलता है, जब फसल घर में आती है, उसके पहले उसको फल नहीं मिलेगा। मगर कर्मयोग में फल कंप्लीट नहीं भी हो तब भी मिलेगा ना, क्यों मिलेगा, भगवान से कनेक्टेड है, मिलेगा ही मिलेगा। काम में कर्म करने से मन अशुद्ध होता है, कर्मयोग करने से, देखो अब आप ही बोलना शुरू करती हो, देखो आप काम में कर्म जब तक करते रहेंगे आप, आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होगा। कर्मयोग करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया, क्यों शुरू हो गया, भगवान आपके जीवन में आ गए। देखो इतनी थोड़ा सा फर्क है, जब काम में कर्म करते हो आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं हुआ, वो ही काम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान आपकी लाइफ में आ गए, आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया। काम्य कर्म के अंदर बुद्धि कैसी रहती है? बहुशाखा अनंत। कर्म योग के अंदर व्यवसात्मिका, एक मेरा एक ही काम है, हम एक भगवान को। आप जब नौकरी करते हो तो किसको प्रसन्न रखते हो ना, किसी न किसी को, मालिक को। महात्मा लोग कहते हैं कि ये तो इन मालिकों का भी वो मालिक है, तो क्यों छोटे मालिक की आप इतनी ये करते हो? उस छोटे से मालिक ने वो तुमको एक तो चेक दे देता है, बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, और आप 8 घंटा करके 30 दिन उसके लिए नौकरी करते रहते हो खाली, उसकी भगवान को मेरा मालिक खुश रहे। कहते हैं भगवान को मालिक बना लो, भगवान कहेंगे आके 3rd अध्याय में जाके भगवान कहेंगे कि तुम उसको मालिक मानो। उसके बाद में जब तक आप काम में कर्म करते रहेंगे आप सांख्य योग के अधिकारी नहीं बनोगे, आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं बनोगे। क्यों नहीं बनोगे भाई? जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं आएगी, आप अधिकारी नहीं बन सकते। और कर्म योग करने से आत्मज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही मन शुद्ध होता जाएगा आपके अंदर वो जिज्ञासा आएगी कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन किस लिए है, मेरे क्या क्या कर्म हैं, क्या सारी जिंदगी खाली मैं आर्णी करता रहूंगा, परिवार ही चलाता रहूंगा, यही काम है क्या? काम्य कर्म के अंदर फल बराबर आपको फाइनाइट मिलेगा, लिमिटेड होगा, मगर कर्म योग करने से फल व्हाट इज दैट इनफाइनाइट? उल्टा तो बता दिया आपने, फाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा। जो भी काम करोगे उसके बदले में आपको जो भी मिलेगा वो इज फाइनाइट, मगर कर्म योग करोगे तो क्या मिल जाएगा? मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति, इनफाइनाइट आनंद, ब्लिस। काम कर्म बंधन में डालता है, कर्म बंधन, और कर्म योग बंधन छुड़ाता है। देखो जब हम कर्म करते हैं काम में कर्म के अंदर फोकस इज ऑन ईगो, जब हम कर्म योग करते हैं तो फोकस इज ऑन भगवान। काम में कर्म करते हैं तो डिजायर्स कितनी होती हैं? बहुत होती जाएंगी, और कर्म योग करते जाएंगे तो डिजायर कम होती जाएंगी, अपने आप कम होती जाएंगी। काम में कर्म जब करते हैं तो उसके अंदर क्रेविंग फॉर प्लेजर रहता है, ऐ आनंद मिलेगा, ये हो जाएगा तो हमको ये मिल जाएगा, क्रेविंग, स्प्रिया। कर्म योग के अंदर ये स्प्रिया नहीं रहती है, क्या रहता है? प्रसाद बुद्धि, ये भगवान का प्रसाद है, जो भगवान ने हमको दिया ये प्रसाद है। काम में कर्म के अंदर यू आर वरीड इन कर्म, आप थक जाते हो काम कर्म करते करते, मगर इन कर्म योग यू डिलाइट, यू नेवर गेट एग्जॉस्टेड। भगवान के लिए अगर कर्म करोगे आप कभी टायर्ड नहीं होगे, मन में आनंद रहेगा। तो कर्म योग जो है आपका जीवन का निर्णयात्मक स्टेप है। अगर आपने समझ लिया है ठीक से कि कर्मयोग के क्या क्या फायदे हैं, तो आपको निर्णय लेना होगा कि हम आज से जो भी कर्म करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, इसको वो चला रहे हैं, तो क्या ये हमारा नहीं बनता है कि हम इस शरीर से हमारा बेस्ट जो उनको करके दें? वो हमारे लिए तो इतना करते हैं, उनके कारण ही तो चल रहा है, तो हम उनके लिए कुछ ना करें? जरूर करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो बहुत साखा बुद्धि रहेगी, जन्म मरण चक्कर चलता रहेगा। अब इसको भगवान बताने जा रहे हैं तीन श्लोकों के अंदर में, जिनकी व्यवसाय में का बुद्धि नहीं है उनका क्या हाल होता है, ये बताने जा रहे हैं। जिसने कर्मयोग को नहीं अपनाया उसका क्या होता है, तो ये हम तीन श्लोक एक साथ पढ़ेंगे।
यामि माम पुष्पितां वाचम् प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वया परित चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। यामि माम् पुष्पितां वाचम् प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते।
या इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चित कौन है? तो अविपश्चित उनको कहा गया है जिन्होंने कर्म योग को नहीं अपनाया है। अविपश्चित जिनकी सांख्य योग के अंदर रुचि नहीं है, जिनको आत्मज्ञान नहीं चाहिए, जो संसार के सुखों के अंदर में रेवल करते हैं, रुचि रखते हैं, ये सब अविपश्चित अनइंटेलिजेंट पीपल। विपश्चित इंटेलिजेंट, अविपश्चित अनइंटेलिजेंट कौन कौन? जो कर्मयोग को नहीं अपनाए हैं, जिन्होंने जिनकी सांख्य के अंदर रुचि नहीं है, नो इंटरेस्ट इन आत्मज्ञान, और तीसरा जो भव सुखों के अंदर में रमते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर में, ऑब्जेक्ट इमोशंस एंड थॉट्स के अंदर रमते हैं, वो सारे के सारे अविपश्चित हैं। तो इनकी अविपश्चित की विशेषता क्या है? तो कहते हैं वेद बाद रता पार्थ। ये पार्थ, ये वेद बाद रता है, रता रेबल, वेद बाद क्या है? बोलते हैं यहां वेद का मतलब हुआ कर्मकांड। ये कर्मकांड के अंदर रेबल करते रहते हैं। अच्छा भाई, कैसे ही करते हैं? बोलते हैं क्या चाहिए आपको, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, शत्रु का विनाश करना है, कर्म कांड करो, ऐसा करोगे स्वर्ग चाहिए, ज्योतिष्ट होम कर दो, स्वर्ग मिल जाएगा। कैसे हैं ये लोग? बोले काम आत्मना, काम आत्मना, काम स्वभावा, काम परा। शंकराचार्य जी कहते हैं इनका स्वभाव क्या है, काम, कामना खत्म ही नहीं होती, लिस्ट ही नहीं खत्म होती है। अब जाते हैं हम लोग, जाते हैं ना मैरियनों में, जाते हैं कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, घर से सोच के जाते हैं कि बच्चे तीन चीजें लेनी है। अब वो ट्रॉली कितनी बड़ी रखते हैं, उनको पता है कि ये तीन चीज का लिस्ट लेके आएंगे, फिर वो भरते रहेंगे अपना। तो बात कहते हैं आदमी जब केवल एक जगह जब जाता है ना, तब तो अपनी लिस्ट के हिसाब से लेता है काम चीजें, वो है दवाई की दुकान में। जब दवाई की दुकान में जाता है, जितना चाहिए उतना लेता है, वहां पर अगर लिखा भी रहे कैंसर की नई मेडिसिन आई है ले लीजिए आप नहीं लोग। तो ये लोग कैसे हैं, काम आत्मना, इनकी लिस्ट ही नहीं खत्म होती, एक के बाद एक लिस्ट आती रहती है। देखो ना हम लोग की लिस्ट कभी खत्म होती है, चलता ही रहता है। तो ये किसमें रेबल करते हैं? बोले सेंस ऑब्जेक्ट में ये लोग रेबल करते हैं, तत्व में उनकी कोई रुचि नहीं है। क्यों? अविपश्चित हैं। बहुत अच्छा, इनको मोक्ष नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए? स्वर्ग पर आ, इनको स्वर्ग चाहिए। क्यों चाहिए? अरे भाई वहां सोमरस मिलता है, वहां लोग बुढ़े नहीं होते हैं, वहां बीमार नहीं होते हैं, वहां मैटरनिटी वार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, लोग मरते नहीं है, स्वर्ग पर आ। बोले स्वर्ग के ऊपर उनके पास में और कुछ भी नहीं है, वही पीक ऑफ द प्लेजर, स्वर्ग जो है उनके लिए यही है। और ये कैसे इसकी स्वर्ग की भी प्रशंसा करते हैं? बोले स्वर्ग की प्रशंसा ये लोग करते हैं ऐसे, याम इमाम पुष्पिताम वाचन, फ्लावरी लैंग्वेज। अरे क्या वहां सुख है, वहां जाके तो देखो, बहुत सुख है, बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं नान्यत अस्ति, नान्यत अस्ति बादिना। बोले इसके अलावा और कुछ नहीं है, स्वर्ग इज द लास्ट, ना अन्य दस्ती ही थी, इसके बाद और कुछ नहीं है। कौन कहते हैं लोग? वेद बाद रताहा, अविपश्चित, जिन्होंने कर्म योग को नहीं अपनाया, जिनको सांख्य योग नहीं चाहिए, जो सेंस ऑब्जेक्ट में रेबल करते हैं, ऐसे लोग वेद बाद रताहा, जो कर्म कांड की केवल प्रशंसा करते रहते हैं कि ये कर्म कर लो ये मिल जाएगा, ये कर लो ये मिल जाएगा, ऐसे लोग फ्लाइवरी लैंग्वेज मतलब उसको कर्म कांड को जो है वो प्रशंसा करते रहते हैं। देखो हम लोग के कोर्स में भी है, जब हम लोग वेदांत कोर्स में थे ना, तो बहुत से लोग वहां देखने आते थे, बोले ये कौन से बेवकूफ लोग हैं इस संसार में, कम से कम ये 100 बेवकूफ तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो पूछते भाई क्यों आए हो यहाँ पर, घर में सब ठीक ठाक है, घर से निकाल तो नहीं दिया या नौकरी वोकरी छोड़ दियो क्या, नौकरी से निकाल दिए गए? फिर ये भी पूछते हैं कोई आपका अफेयर वफेयर तो नहीं था, कहीं वहां से तो नहीं गिर पड़े? तो ऐसे ऐसे लोग आके प्रश्न करते हैं। फिर ये भी कहते हैं ये आपकी उम्र है वेदांत पढ़ने की, आप अभी 30 साल के नहीं हुए, जाओ शादी करो मौज करो, वेदांत क्यों पढ़ने आयो? अविपश्चित, ये लोग आके ऐसा कहते हैं। तो ऐसे लोगों की विशेषता क्या है? विशेषण ऑफ पुष्पिता वाचक जो करते हैं वेद बाद रहता है, तो यहां पर कहते हैं तीन चीजें बताइए, जन्म कर्म फल प्रदान, क्रिया विशेष बहुलाम, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। इनकी तीन विशेषताएं हैं। तो भोग ऐश्वर्यम गति, भोग करना चाहते हैं ऐश्वर्य लॉर्डशिप, ये ऐसे लोग जो है कर्म कांड करके बोलते हैं वायु देवता बन जाएं, अग्नि देवता बन जाएं, कर्म कांड करके इंद्र बन जाएं, सौ एक सौ अश्वमेघ यज्ञ आप कर लीजिए, आप इंद्र बन जाओगे, मगर आपके बाद में फिर दूसरे किसी ने कर दिया तो आप उतर गए, वो बन जाएगा। तो ऐसे लोग कर्मकांड करके ये पावर चाहते हैं, लॉर्डशिप। हमारे यहां भी लॉर्डशिप करते हैं हम लोग घर में करते हैं ना, लॉर्डशिप चलती रहती है। तो अपने परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर लॉर्डशिप चलती है। वहां अगर नहीं चली तो फिर कुत्ता पकड़ के ले आते हैं, कुत्ते का नाम देते हैं टाइगर। मनीमन कहते हैं ना, टाइगर कम हियर, टाइगर आ गया। अपने को सोचते लॉर्ड देखो टाइगर गया, वैग योर टेल, टेल ऐश्वर्य, लॉर्डशिप हम चाहते हैं ये सब चीजें। बहुत अच्छा। देखो हमारे ये आपके घरों में ऐसा है, ऐसा नहीं है, हमारे चिन्मय मिशन में भी ऐसा है। कैसा है, स्वामी जी को कौन खाना बनाएगा, उसमें भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स चलती रहती है। कौन परोसेगा, अब देखो खाना किसी ने बनाया है, वो परोसने वाला बीच में से आके घुस के परोसना शुरू कर देता है,
सही बात है।
ये पॉलिटिक्स है। अच्छा ऑफिस के अंदर भी पॉलिटिक्स है, चलती रहती है ना, ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो यहां भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसे कर्म करना ये सहज नहीं है। क्रिया विशेष बहुलाम, बोले बहुत से काफी रिचुअल्स करने पड़ते हैं। हम लोग भागवत पढ़ रहे थे, उसमें सौनक आदि ऋषि वो लोग यज्ञ कर रहे थे, 1000 वर्ष का यज्ञ। इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, 1000 वर्ष का यज्ञ चलेगा। तो मतलब रिचुअल्स के अंदर में कई स्टेप्स होते हैं। देखो समझाने के लिए आपको हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा तो रिचुअल्स में क्या है। मान लो आपको इंडिया से अमेरिका आना है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। देखो रिक्वायरमेंट देखिए, केवल आने के लिए एक पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद बोलेंगे आपको नहीं, पहले पुलिस क्लियरेंस भी चाहिए। पासपोर्ट के पहले बोलेंगे पुलिस क्लियरेंस में जाओ, पुलिस क्लियरेंस देगी तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। पासपोर्ट मिलने के बाद में आप बोलोगे वीसा के लिए करना है, अप्लाई करना है। आप वीसा के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले पूछते हैं आपका कोई स्पॉन्सर है वहाँ पर भी नहीं, कोई आपका वहाँ जाओगे खर्चा वर्चा कौन देगा वहाँ जाके आपका खर्चा। आप गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं बन जाना, पहले बताओ कौन कौन बुला रहा है आपको। स्पॉन्सरशिप आपका देखेंगे, स्पॉन्सरशिप फॉर्म हम भर दिए, अपॉइंटेड टाइम पर आप गए। तो आप पूछेंगे क्यों जाना चाहते हो, अगर आप यंग हो तो बोलेंगे हस्बैंड जा सकता वाइफ रहे, या वाइफ जा सकती हस्बैंड रहे, दोनों को नहीं हम देंगे। क्यों, अगर आप जाके वहां पर वापस ना हो फिर क्या होगा। तो कितने इसके अंदर में रिक्वायरमेंट्स है ना, एक के बाद एक स्टेप करते जाना होगा। अब मान लो वीसा मिल भी गया, आप यहां पहुंच गए इमिग्रेशन ऑफिस के पास में, वो आपकी तरफ देखता है कितने दिन रहोगे। आप बोलोगे 6 महीने रहेंगे, नहीं आई अलाउ यू 3 मंथ ओनली, 1 मंथ उनकी मर्जी। 1 महीने का टप्पा लगा के आपको दे दिया। तो क्रिया विशेष बहुलाम, बोले कर्मकांड के अंदर में क्रिया विशेष बहुत है। और उसके बाद में जन्म कर्म फल प्रदान, कर्मकांड से आपको स्वर्ग मिल गया। उनके लास्ट पॉइंट क्या, पीक पॉइंट क्या, स्वर्ग। मगर स्वर्ग के बाद में फिर छीने पुण्य मर्त्यलोके विसंति। और आप लोग जानते ही हैं, आप कितने दिन 5-स्टार होटल में रहोगे स्विट्जरलैंड में, जितने दिन तक आपके पास में पॉकेट में डॉलर्स हैं,
पुण्य है,
डॉलर का पुण्य जितने दिन तक पॉकेट में है उतने दिन रहोगे, उसके बाद आप चले आओगे। कहाँ आओगे, छीने पुण्य मर्त्यलोके विसंति, जहां थे वहां गए। मुंडक उपनिषद कहता है कि जैसी आपकी वासना रहेगी, जैसी आपकी कामना रहेगी, वैसा ही आपका जन्म होगा। जैसी कामना रहेगी वैसा ही जन्म होगा। कैसे इसको समझें, जैसे अब मान लो आप ऑफिस से लौट रहे हो, ऑफिस से लौटते 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 आपको बीच में स्टारबक्स नजर आ गया, आपके मन के अंदर कामना है कि स्टारबक्स चलो कॉफी पी लेते हैं। कॉफी पीते 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 आपको सिनेमा की याद आ गई, आप AMC चले गए। देखो जन्म मरण होता जा रहा है, आप वहां से ऑफिस से छूटे, आपका जन्म स्टारबक्स में हुआ, स्टारबक्स के अंदर कामना आई, स्टारबक्स की मृत्यु हुई, आपका जन्म AMC में हुआ। ठीक उसी तरह से आपका ये जीवन भी ऐसे ही चलता रहता है। आपकी लास्ट जो कामना है, आपकी जो लास्ट कामना है उसके हिसाब से आपको जीवन मिलेगा, लास्ट कामना। इस वास्ते हमारे गीता में आगे आएगा कि अगर आप भगवान का नाम लोगे अंतकाल में तो कहां जाओगे, भगवान के पास जाओगे। अगर आप अपनी संतान का नाम लोगे, हो गया जाओ। अगर आप अपने अपने पैसे की चिंता करते रहे, मेरा पैसा इतना कमाया था यहां रखा हुआ है, कौन देखेगा, कैसे होगा, फिर क्या होगा, बैठे रहोगे उसको ऊपर धन के ऊपर। हमारे भज गोविंद में भी कहा गया है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। सारे कर्म कांड का फल एक वर्ड में समझ लीजिए कि सब के सब फाइनाइट है और जन्म लेना है। देख लो जितने भी कर्म कांड हैं, स्वर्ग तक भी आप चले गए, छीने पुण्य मर्त लोके भी संति, अल्टीमेटली जन्म, फिर से वापस जन्म लेना है। बहुत बढ़िया। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उनके अंदर भोग और ऐश्वर्य की बहुत लालसा रहती है। क्यों? क्योंकि व्यवसात्मिका का बुद्धि नहीं है, व्यवसात्मिका का बुद्धि कर्मयोग वाली बुद्धि नहीं है, उन्होंने एक निश्चित नहीं किया, अनंत शाखा बुद्धि है। भोग और ऐश्वर्य के अंदर ये लोग फंसे हुए हैं, वो अभी भी यहां भी भोग चाहते हैं और यहां के जाने के बाद में भी भोग चाहते हैं, मरने के बाद में स्वर्ग जाएंगे। कोई वापस आके बताया नहीं आज तक, किसी को मालूम नहीं है कि मरने के बाद में स्वर्ग मिलता भी है कि नहीं, ये भी नहीं मालूम है। कोई आके वापस नहीं बताया कि हम वापस आ रहे हैं, जा भी सकते हैं। बहुत को तया अपहृत चेतसाम, उनकी चेतसा अपहृत है, लूटेड, उनका जो है बुद्धि स्थिर नहीं है, अपहृत है। और वो पुष्पिताम वाचा, पुष्पित वाणी बोलते रहेंगे, ये भी ले लो वो भी ले लो। और जब ऐसे ही वो आपको ऐसी ऐसी अच्छी बातें कहेंगे ना, तो आपको लगेगा ये तुमको बुला रहे हैं, स्वर्ग बुला रहा है, भोग वस्तुएं बुला रही है। फिर आपको वो ये गाना याद आ जाएगा, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, आजा आजा आजा। जब जाते हो ना, हम हॉथन मॉल में जाते हैं, वो जितनी दुकानें हैं ना वो सब कहते हैं आजा आजा आजा, एवरीथिंग इज डिस्प्लेड, आ जाओ। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते, व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते, बोले इन लोगों के अंदर में व्यवसायिक बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, एका बुद्धि न विधीयते, नहीं है इनके पास में। समाधव न विधीयते, देखो चार पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारे के सारे मन के अंदर हैं। अगर मन ही आपका अशांत है तो कैसे व्यवसायत्मिका बुद्धि होगी, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होगी। अगर कर्मयोग आपने नहीं लिया है, सिंगल पॉइंटेड नहीं किया है, तो आपके अंदर कभी भी ये चीज नहीं घटेगी। तो जिसको वर्ल्डली सुख चाहिए उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगी, और जिसको स्पिरिचुअलिटी चाहिए उसको वर्ल्डली सुख छोड़ना पड़ेगा। भगवान आगे जाके बताएंगे, एक दो श्लोक के बाद नहीं बताएंगे कि ब्रह्मानंद के अंदर विषयानंद इंक्लूडेड है। अगर आप विषय का आनंद लेते हो तो आपको ब्रह्मानंद नहीं मिल रहा है, मगर आपको ब्रह्मानंद मिल गया तो उसके अंदर विषय आनंद पार्ट ऑफ इट है। तो ये हमको निश्चित करना है। सेकंड मीनिंग ऑफ समाधौ न विधीयते, समाधि माने आत्मा, ऐसे आदमियों का मन कभी भी आत्मा में समाधिस्थ नहीं होता। कुछ किस आदमियों का? अव्यवसायी नाम, जिनकी बुद्धि निश्चय आत्मिका नहीं है, उनकी बुद्धि कभी भी समाधिस्थ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि डिजायर रहने से आपका माइंड राजसिक और तामसिक स्टेट में है। देखो, ब्रह्मचारियों का मन सात्विक होता है, फिर भी उनको काफी तकलीफ होती है समाधि पाने के लिए। जब उनको नहीं मिलती है तो इनको कैसे मिलेगी? राजसिक तामसिक लोगों को कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने कह दिया, व्यवसायत्म का बुद्धि न विधीयते, समाधौ न विधीयते। तो हम लोग को यह विचार करना है कि हमको क्या चाहिए। अगर आपको ब्रह्मानंद चाहिए तो आपको पहले अधिकारी बनना है। अधिकारी बनने के लिए आपको काम या कर्म करना है?
नहीं,
नहीं। प्रेमल प्रेमल जी इज लिसनिंग। काम या कर्म नहीं करना है। कौन सा कर्म करना है? कर्म योग करना है। और कर्म योग माने क्या? भगवान की आराधना करनी है नंबर वन, और सम बन के करना है। समता, समता कैसे बनेगी? कर्म करने के बाद बनेगी? कर्म करने के पहले बनानी होगी, ऐसी बुद्धि पहले बनानी होगी। कर्म फल के टाइम में भी आप सम बन के रहना चाहोगे तो नहीं होगा। और निसंगतया करना है, कर्म करना है। आप एक मोमेंट विदाउट कर्म नहीं रह सकते, मगर निसंग होके कर्म करना है। ऐसा करोगे तो आप ज्ञान के अधिकारी होगे, ज्ञान के अधिकारी होगे तो मुक्ति होगी, मुक्ति होगी तो ब्रह्मानंद मिलेगा। ब्रह्मानंद के अंदर में सारे विषयों का आनंद उसी के अंदर है। तो आज हम लोग यहां रुकते हैं, उसके बाद भगवान कहेंगे कि हे अर्जुन, तुम स्वर्ग की कामना मत करो, स्वर्ग की कामना मत करो। तो अर्जुन को जो समझा रहे हैं वो हम लोग के लिए भी है कि हम लोग को स्वर्ग की कामना नहीं करनी है। क्या कामना करनी चाहिए भगवान बताएंगे। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि एनी डाउट? देखो ये साइंस है, पक्का साइंस है। डाउट आप मत रखना एकदम। योर नॉलेज शुड बी डाउट फ्री। जरा सा भी डाउट होगा ना, यू विल नॉट ट्रेड दिस पाथ, यू विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो डाउट हो तो पूछ लेना।